ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदनमोहनौ। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंध के दूसरे अध्याय के 10 नंबर का श्लोक। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 2 श्लोक 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तावत् यात भुवं यूयं ब्रह्मच्छत्रसमेधितां सुदयध्वम् तपोजज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। तावद्यात भुवं यूयं ब्रह्मच्छत्रसमेधितां सुदयध्वं तपोजज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। तावत् जब तक मैं विष्णु के मारने में व्यस्त हूं या तो जाओ भुवम पृथ्वी लोक में यूयम तुम सब ब्रह्मक्षत्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का समेधिता कर्म ब्राह्मण संस्कृति तथा वैदिक शासन द्वारा संपन्न बने हुए सोदयध्वम विनष्ट कर दो। तप तपस्या करने वालों को, यज्ञ यज्ञ स्वाध्याय वैदिक ज्ञान का अध्ययन, व्रत अनुष्ठान संबंधी प्रतिज्ञाएं, दानिनः तथा दान देने वालों का। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ। जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, ये लोग तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन अनुष्ठानिक व्रत तथा दान देने में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर के विनष्ट कर दो। तात्पर्य, हिरण्यकश्यप का मुख्य उद्देश्य देवताओं को विचलित करना था। उसने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को मार डालने की योजना बनाई, जिससे विष्णु की मृत्यु होने पर सारे देवता स्वतः निर्बल होकर मर जाएंगे। उसकी दूसरी योजना पृथ्वीवासियों को सताने की थी। पृथ्वीवासियों तथा अन्य लोगों की शांति तथा समृद्धि ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा बनाए रखी जाती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सिष्टम गुण कर्म विभाग सह, प्रकृति के तीन गुणों तथा उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है। सभी ग्रहों में भिन्न भिन्न प्रकार के वासी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्यों द्वारा निवसित पृथ्वी लोक के प्रसंग में वे संस्तुत करते हैं कि समाज चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया जाए। इसे पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व ऐसा जाना जाता है कि यह पृथ्वी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित होती थी। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह सम शांति दम आत्मसंयम तितिक्षा सहिष्णुता सत्यम सच्चाई शौचम स्वच्छता तथा आर्जवम सरलता का संवर्धन करे, और तब क्षत्रिय राजाओं को मंत्रणा दे कि देश या लोक पर किस तरह शासन किया जाए। ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते हुए क्षत्रियों को चाहिए वे जनता को तपस्या यज्ञ स्वाध्याय तथा वैदिक अनुष्ठानों में दृढ़ बनाने के लिए प्रवृत्त करें। उन्हें ब्राह्मणों सन्यासियों तथा मंदिरों को दान देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति का यह दैवी विधान है। लोगों की प्रवृत्ति यज्ञ संपन्न करने की ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि यज्ञ न किए जाएं तो वर्षा अपर्याप्त होगी। यज्ञात भवति पर्जन्य, जिससे कृषि कर्म में बाधा उपस्थित होगी। पर्जन्याद अन्न संभव, अतएव ब्राह्मण संस्कृति का सूत्रपात करके क्षत्रिय सरकार को चाहिए कि लोगों को यज्ञ करने वेदों को पढ़ने तथा दान देने के प्रति प्रवृत्त करे। इस प्रकार लोगों की आवश्यकताएं सरलता से पूर्ण हो सकेंगी और समाज में उपद्रव नहीं होंगे। इस संबंध में भगवान कृष्ण भगवद्गीता 3:12 में कहते हैं, इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। सारे देवता जीवन के विविध आवश्यकताओं का भार संभालने के कारण यज्ञ संपन्न होने से तुष्ट होकर मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किंतु जो व्यक्ति इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करता है वह निश्चय ही चोर है। देवतागण वैध इच्छा पूर्ति अभिकर्ता है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के प्रतिनिधि रूप में कार्य करते हैं, अतएव नियत यज्ञ संपन्न करके उन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ बताए गए हैं, किंतु ये सारे यज्ञ अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही समर्पित होते हैं। जो पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता उसके लिए संस्तुति की जाती है कि वह देवताओं के लिए यज्ञ करे। वेदों में संबंध व्यक्तियों के भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न यज्ञों की संस्तुति की गई है। विभिन्न देवताओं की पूजा का आधार भी संबंधित व्यक्तियों के गुणों के अनुसार है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को प्रकृति के विभत स्वरूपा देवी काली की पूजा की संस्तुति की जाती है। इस देवी के समक्ष पशुओं की बलि दी जाती है, किंतु सतोगुणियों के लिए विष्णु पूजा की संस्तुति की गई है। अंततः सारे यज्ञ क्रमशः दिव्य पद तक उठने के निमित्त किए जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज की सारी आवश्यकताएं भगवान के अभिकर्ता देवताओं द्वारा पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के समस्त खाद्य पदार्थों के विषय में विचार करें। इनमें अन्न, फल, तरकारियां, दूध तथा चीनी सम्मिलित हैं, जो शाकाहारियों के लिए हैं। इनमें मांसाहारियों के लिए भी खाद्य पदार्थ होते हैं यथा मांस, किंतु इनमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं हो सकता। पुनः दूसरा उदाहरण उष्मा, प्रकाश, जल तथा वायु का ले लें, जो जीवन के लिए आवश्यक है, और इनमें से किसी का भी निर्माण मानव समाज द्वारा नहीं हो सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर सूर्य प्रकाश हो सकता है, न चांदनी, न वर्षा, न मंद समीर, जिनके अभाव में कोई जीवित नहीं रह सकता। अस्पष्ट है कि हमारे जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर निर्भर है। यहाँ तक कि अपने निर्माण कार्यों के लिए भी हमें अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातुएं, गंधक, पारा, मैग्नीज इत्यादि, और ये सब भगवान के अभिकर्ताओं के द्वारा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि हम इनका उचित उपयोग करके अपने को स्वस्थ रह करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात संसार में जीवन संसर्ग से मोक्ष है। यह जीवन लक्ष्य यज्ञों को संपन्न करके प्राप्त किया जाता है। यदि हम मनुष्य जीवन के प्रयोजन को भूल जाते हैं और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान के अभिकर्ताओं से आपूर्ति ग्रहण करते जाते हैं और संसार में अधिकाधिक फंसते जाते हैं, तो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है तो निश्चित ही हम चोर बन जाते हैं और हमें प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। निपट भौतिकतावादी चोरों का कोई परम जीवन लक्ष्य नहीं होता। वे इंद्रिय तृप्ति द्वारा निर्देशित होते हैं, उन्हें यज्ञों को संपन्न करने का कोई ज्ञान भी नहीं होता। किंतु भगवान चैतन्य ने यज्ञ की सरलतम विधि का सूत्रपात किया है, जो संकीर्तन यज्ञ है, और जिसे विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार कर लेता है संपन्न कर सकता है। हिरण्यकश्यपु ने पृथ्वी के निवासियों को मार डालने की योजना बनाई थी, जिसमें यज्ञ बंद हो जाए, और जब परमेश्वर भगवान विष्णु का स्वतः वध हो जाएगा तो सारे देवता विचलित होकर स्वतः मर जाएंगे। ये हिरण्यकश्यपु की आश्री योजनाएं थी, जो ऐसे कार्यों में दक्ष था। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग हिरण्यकश्यपु के निर्देश को सुन रहे हैं। यद्यपि हिरण्यकश्यपु आक्रोश में बोल रहा है, वैदिक संस्कृति का विरोध कर रहा है, लेकिन उसके विरोध के वचन से भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं। आप कथा जानते हैं कि भगवान के गुण के विषय में प्रश्न किया गया, शिशुपाल के उद्धार को देख करके महाराज युधिष्ठिर प्रश्न किए, जो बचपन से ही गाली बकता था, भगवान का अपमान करता था, उसकी सदगति हुई, यह बहुत आश्चर्य की बात है। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हम सिद्धांत स्थिर नहीं कर पा रहे, हमारी बुद्धि वैसे विचलित हो रही है जैसे कोई दीपक है हवा के झकोरों से इधर उधर उसका लौ होता रहता है, दीपार्चे इव, जैसे मोमबत्ती जलाए हैं और हवा का झकोर आ रहा है तो कभी उसका लौ इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि तो वैसे ही अस्थिर हो रही है। उनके प्रश्न के उत्तर देने के क्रम में नारद जी दो चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, एक तो तत्व विचार। तत्व विचार इस अर्थ में कि भगवान मान अपमान से ऊपर है, किसी का तिरस्कार या सम्मान किया जाता है वह भौतिकता के स्तर पर है तो इसी से वह प्रभावित होता है। वास्तव में भगवान तो प्रकृति के गुणों से रहित हैं और इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके साथ ही नारद जी कह रहे हैं, अब ये मुक्ति के विषय में प्रश्न कर रहे हैं तो वास्तव में वे तो भगवान के पार्षद ही हैं, उनका ब्राह्मणों के साप के चलते पतन हुआ और 3 जन्म के बाद वे भगवान को प्राप्त कर लिए। अब इसी इतिहास को प्रस्तुत करने के क्रम में वे कह रहे हैं कि वे दिति के गर्भ से जन्म लिए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष छोटा था और उसका वध भगवान कर दिए सूकर रूप धारण करके। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ, तो भ्रातर एवं विनिहिते हरिणा क्रोड मूर्तिना, सुवर सुकर रूपधारी हरि के द्वारा जब भाई का वध हो गया तो हिरण्यकश्यपु राजन पर्यतप्यद रुषा सुचा। हिरण्यकश्यपु बहुत तप्त हुआ, बहुत कष्ट अनुभव होने लगा, बहुत जलने लगा। किस चीज से जल रहा है तो रुषा सुचा, क्रोध और शोक से। उसको क्रोध है विष्णु के प्रति, भगवान के प्रति कि हमारे भाई का वध किया, और अपने भाई के वियोग से वह शोक में है। तो क्रोध और शोक से वह जल रहा था, तप्त था, और आह चेदम रुषा पूर्ण संदष्ट दशन अच्छद घूर्ण आह चेदम रुषा घूर्ण संदष्ट दशन अच्छद। उसके क्रोध का वर्णन कर रहे हैं कि इतना क्रोध में था दशन अच्छद, जो दांत का ढक्कन है, दशन ने दांत और छद मतलब ढक्कन, दांत को क्या चीज ढांकता है, ओठ। इतना क्रोध में था कि लगता था कि ओठ को ही काट डालेगा, संदष्ट क्रोध से। और घूर्ण उसके आंख लाल लाल थे, ओठ को दांत से दबाया था। कोपो जलद्भम चक्षुर्भ्याम निरीक्षण धूम्र मंबरम। और वो ऊपर आकाश में देख रहा था, कह रहे हैं कि निरीक्षण धूम अंबरम, वो आकाश को देख रहा था और धुआं को देख रहा था। भी आकाश तो बात समझ में आ रही, आकाश को देख रहा है, धुआं कहां से आ गया। तो कोपो जलद्भम चक्षुर्भ्याम, वो अपने दोनों आंख से ऊपर देख रहा था। ऊपर देखने का आशय है कि उसको धारणा थी कि वो तो ऊपर रहता है विष्णु, उसका वध करना है, तो अपने लक्ष्य के तरफ देख रहा है। और इतना क्रोध में था कि उसके आंख से ही धुआं निकल रही थी, उसके क्रोध के ताप से आकाश में धुआं भर गया था। तो धुआं को भी देख रहा है और आकाश को देख रहा है। कराल दृष्टोग्र दृष्टिया दुष्प्रेक्षा भ्रुकटी मुखा, उसके भौवें टेढ़ी थी और दांत इतने विकराल दिख रहे थे कि कोई भी उसके सामने देखने का भी साहस नहीं कर रहा था। शूल मुद्यम्य सदसी दानवा निदम अब्रवीत, और उनका समाज था, सबको बुलाया था दैत्यों को। और शूल मुद्यम्य त्रिशूल लेकर के दानवान इदम अब्रवीत सदसी, उसी समाज में अपने सहयोगियों को संबोधित करके कहने लगा। अब क्या क्या कह रहा है, कई एक श्लोक में दिया गया है और उसी के एक श्लोक की व्याख्या हम लोग करेंगे। और पहले सबको संबोधित कर रहा है, जो मुख्य मुख्य सहयोगी थे, उसके पक्ष के लोग थे, तो उनको संबोधित कर रहा है कि कोई एक बात भी छूट न जाए, ध्यान दे करके तुम लोग सुनो। अपने दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा है। भोभो दानव दैते या दिमूर्धस्त्यक्ष संबर, जो लीडर है संबोधित कर रहा है, दानव दैते या दनु के पुत्र दिति के पुत्र दिमूर्ध, वे दैत्य हैं और देखने में भी भयंकर हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। कुछ लीडर हैं, उनका नाम उनके रूप के आधार पर लिखा गया दुमूर्ध। कोई कोई हैं कि उनको दो मुख है, उसको दुमूर्ध कह रहे हैं। और त्र्यक्ष कोई कोई है तीन आंख है, एक लीडर है उसका तीन आंख है। संबर, अब कोई है कि एकदम लोहा जैसा उसका शरीर है, संबर लोहबंदा, या वो लोहबंदा लेकर के चलता होगा वो, इसलिए उसका नाम संबर है। और सतबाहो, कोई है कि एक है कि उसको सौ बाहें हैं। हयग्रीव, किसी का मुख घोड़ा जैसा है, तो उसको संबोधित कर। नमुचे, बहुत शक्तिशाली एक दैत्य, उसका नाम है नमुची। नमुची का अर्थ है कि जिसको पकड़ लेगा तो छोड़ नहीं सकता, मुंचे छोड़ने के अर्थ में, लेकिन नमुची वह छोड़ने वाला नहीं है, एक बार पकड़ लिया तो मार ही डालेगा। पाक इलवल, और एक तो सीधे पाकिस्तान का ही प्रतिनिधित्व करने वाला विप्रचीते, एक दैत्य था कि सीधे ब्राह्मणों को ही पका करके खा लेता था विप्रचित। और ऐसे कई एक दैत्यों को संबोधित कर रहा है और कह रहा है श्रृणुता सुनो और अंतरम क्रियताम आसु, और देर नहीं करना, सुनने के बाद तुरंत इसको संपादित करना है। मा चिरम, अब इतना अर्जेंट कार्य उसके दृष्टि में है, कह रहा है कि जल्दी करना है, देर नहीं करना है। क्या बात है, तब कह रहा है सपत्नेर घातितः क्षुद्र भ्राता में दैतो सहित प्राश्नी ग्राहीण हरिणा समेना पुपधाव नहीं। कि हमारा भाई मार दिया गया, हमारा भाई बहुत प्रिय था हमको, उसका वध कर दिया गया, वो मार दिया गया। और हिरण्याक्ष वो मार दिया गया, वो तो बड़ा शक्तिशाली था, उसको कौन मार दिया। हिरण्याक्ष के विषय में वामन देव कहे हैं कि अरे आपके बलि महाराज से कह रहे हैं कि आपके खानदान में तो ऐसा वीर हुआ कि गदायुध, एक केवल गदा लेकर के और दिग्विजय के लिए निकल गया और पूरे विश्व में कोई जोड़ का नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि दैत्य सहित बड़ा हमारा ध्यान रखता था, बहुत प्रिय था, और वो मार दिया गया। पार्श्व ग्राहीण हरिणा समेना उपधावन क्षुद्र ही के देवताओं के द्वारा मार दिया गया। अरे देवता वे कैसे हिरण्याक्ष का वध कर देंगे। के ना पार्श्व ग्राहीण हरिणा समेना उपधावन, वो डायरेक्ट वध नहीं किए हैं, उनका पक्ष ले करके और हरिणा विष्णु के द्वारा मारा गया, विष्णु मार दिया। अरे भाई भगवान हरि क्यों किसी का वध करेंगे, वे तो सम है। कहेंगे हाँ समय न, वह सबके प्रति सम है, उस पर हम दोष नहीं लगा रहे हैं, वो तो देवता और दैत्य दोनों के प्रति सम दृष्टि रखता था। लेकिन क्षुद्र उपधावन ही पार्श्वी ग्राहीण, लेकिन ये देवता उसका इतना पूजा किए, सत्कार किए कि उनके पैरवी से, उनके सत्कार से उनका पक्ष ग्रहण कर लिया, तो उनका पक्ष ले करके और वध कर दिया। ओ, अब आगे कह रहा है कि उसका हमें वध करना है। अरे प्रश्न होगा, वो तो ईश्वर है, उसका वध कैसे करेंगे, ये क्या आप सोच रहे हैं। कि न तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणेर माया बनौकस, वो मैं मानता हूं कि ईश्वर था, लेकिन कब तक उसका बल काम करता था, जब तक सम था। अब तो वो पैर भी सुनने लगा, पक्षपात करने लगा, तो उसका स्वभाव बदल गया, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणेर माया बनौकस, अब वो ईश्वर नहीं है, उसका पोजीशन खत्म हो गया, गिर गया। त्यक्त स्वभावस्य, अरे प्रकट प्रमाण है उसका इतना पतन हो गया, छी छी सुअर का रूप धारण करता है, अब वो भगवान है। भजंतम भजमानस्य, जो उसका भजन करता है उसी के पीछे हो जाता है। बालस्य इव अस्थिरात्मन, वो तो एकदम बच्चे के समान उसका पोजीशन हो गया। बच्चे को थोड़ा कुछ खेलने का सामान दे दीजिए, खाने का सामान दे दीजिए, वो पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, वो एकदम बच्चे जैसा हो गया। मच्छुल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वय असिक प्रियम तर्प इससे भ्रातरम में गतव्य था, उसका वध करेंगे इसी त्रिशूल से, तब हमारी व्यथा समाप्त होगी। बौद्ध करने से क्या लाभ होगा? वो कह रहे हैं कि उसी के खून को हम अपने भाई को देंगे जलांजलि के रूप में। हमारे भाई को खून बहुत प्रिय है, जल अर्पित न करके खून ही अर्पित करूंगा, इससे तर्पण करूंगा। और कह रहे हैं कि भूरिणा रुद्रेण भाई, वो विष्णु बहुत स्वस्थ है, जब काटूंगा तो खून बहुत गिरेगा, पर्याप्त खून मिलेगा, उसी से मैं अपने भाई का तर्पण करूंगा। कह रहे हैं कि हम तो विष्णु का वध करेंगे, लेकिन तुम लोगों को भी कुछ काम करना है। अपनी योजना तो बतला दिया, अब इनको कह रहा है कि तस्मिन, नहीं पहले ये लोग पूछ सकते हैं क्या लाभ होगा विष्णु को, विष्णु का वध करने से क्या लाभ होगा? तो दुश्मनी तो देवताओं से है, गलती तो देवताओं की है। तो कह रहे तस्मिन कूटे हिते नष्ट कृत मूले वनस्पत बिटपाई वसुष्यंती विष्णु प्राणा दिवौकस। विष्णु प्राणा, देवता का प्राण तो विष्णु में बसता है, तो विष्णु का यदि हम वध कर देते हैं तो जैसे किसी वृक्ष का जड़ काट देने से वृक्ष तो स्वतः सूख जाता है, और वैसे ही विष्णु का वध कर देंगे तो देवता तो स्वतः ही मर जाएंगे, वे सूख जाएंगे, क्योंकि प्राण तो विष्णु है। वो अपनी योजना को बतला रहा है, इसके बाद दैत्यों को कह रहा है कि तावद यात भुवम जूयम ब्रह्म छत्र समेधिता। हम तो विष्णु का वध करेंगे, अभी जब तक वध नहीं कर लेते उसके पहले ही तुम लोग पृथ्वी पर चले जाओ। अरे आप तो विष्णु का वध करेंगे, ठीक है, हम लोग पृथ्वी पर क्या करेंगे, पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हैं? तो ब्रह्म छत्र समेधिता, और पृथ्वी के विषय में कह रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों से बहुत समृद्ध है, उनके व्यवहार से पृथ्वी बहुत समृद्ध है, तो तुम लोग पृथ्वी पर जाओ। वहां जाकर के क्या करेंगे? सुदयध्वम, वहां जाकर के सबको नष्ट कर दो। किसको नष्ट करें? तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रत दानिन, जो तपस्या में लगे हुए हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, जो स्वाध्याय में लगे हैं, ये जो व्रत का पालन कर रहे हैं, या जो दान देने वाले, जो दान दे रहे हैं, और उनको जाकर के नष्ट कर दो। ये हिरण्यकश्यप डिक्टेट कर रहा, बतला रहा, तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और यज्ञ करने वाले, तपस्या करने वाले, दान देने वाले, स्वाध्याय करने वाले, व्रत का पालन करने वालों को नष्ट कर दो। अरे भाई, कोई पूछ सकता है कि इससे क्या लाभ होगा? बैर है देवताओं से, और ये ब्राह्मण क्षत्रियों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर भेज रहे हैं, कुछ कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा। सब आगे के श्लोकों में बतलाया है, कह रहा है कि विष्णु द्विज क्रिया मूल, कि ये जो भी यज्ञ हो रहा है या तपस्या लोग कर रहे हैं तो उसका मूल विष्णु है। विष्णु को ही केंद्र में रह करके सब क्रिया कर रहे हैं, और इन सब क्रिया को यदि बंद कर दिया जाए तो विष्णु कमजोर हो जाएगा, हमको मारने में सुविधा होगी। और जब ब्राह्मण यज्ञ नहीं करेंगे, लोग तपस्या नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, तो देवता तो कमजोर हो जाएंगे, वे ऐसे भोजन के बिना मर जाएंगे। हिरण्यकश्यप अपने साथियों को पृथ्वी पर भेज रहा है और उसके पीछे उद्देश्य है कि देवताओं को वो मारना चाहता है और पृथ्वी के समृद्धि को भी खत्म करना चाहता है। असुर है, देवताओं से तो उसका बैर है, इसलिए उनको मारना चाहता है। लेकिन असुर का स्वभाव है कि वे किसी के समृद्धि को भी सहन नहीं करते, तो अपने स्वभाव से ईर्ष्यावश पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है, यहाँ की व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है। और इसलिए वह निर्देश दे रहा है कि पृथ्वी पर जो भी तपस्या करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, व्रत का पालन करने वाले हैं, दान देने वाले हैं, उनको तुम जा करके नष्ट कर दो। यह असुर का विचार है। दान और यज्ञ तपस्या से समृद्धि बढ़ती है और इसी का प्रभाव है कि पृथ्वी ब्रह्म छत्र समेधिता, ये ब्राह्मण और क्षत्रियों के सहयोग से पृथ्वी समृद्ध है, इसको नष्ट करो। और इसमें बहुत सुंदर सिद्धांत का ध्वनि है और इस सिद्धांत को भगवान गीता में खूब स्पष्ट रूप से बतलाए। ब्रह्म छत्र समेधिता, पृथ्वी पर जो समृद्धि है और उसका मूल सूत्र क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे समृद्धि आती है और क्षत्रिय सुंदर शासन करते हैं, दान की व्यवस्था करते हैं और लोगों को तपस्या के लिए प्रेरित करते हैं, तो इससे समृद्धि बढ़ती है। ये सब समृद्धि के मूल कारण है। भगवान गीता में कहते हैं कि सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। जब ब्रह्मा जी सृष्टि किए तो सात्विक लोगों की सृष्टि किए, ऐसे प्रजा के सृष्टि किए जो यज्ञ करने वाले हैं, और उनका सृष्टि करके और उनसे कहे कि अनेन प्रसविष्यध्वम ऐसा वस्तुष्ट कामधु। वे कहे कि यज्ञ से ही तुम लोग समृद्धि को प्राप्त होगो। और वे यज्ञ से कैसे समृद्धि को प्राप्त करेंगे, यज्ञ में तो और डालना पड़ेगा, खर्चा होगा, कि ना अस्तु इष्ट कामधु, यही यज्ञ ही तुम्हारे सब सुख सुविधा को प्रदान करने वाला होगा। ये कैसे होगा कि देवान भावेता ने न, यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करो, उनको प्रसन्न करो और ते देवा भावयंतु वह, और देवता आपको समृद्धि प्रदान करेंगे। परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यत, और देवता और मनुष्य में सहयोग होगा तो स्वाभाविक ही समृद्धि के प्राप्ति होगी। और सिद्धांत को समझना चाहिए, भगवान सृष्टि किए हैं तो सृष्टि कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे लोग शांति पूर्वक रहे, इसके लिए व्यवस्था बनाए। जीवन जीने के लिए बहुत बहुत संसाधन की आवश्यकता है, वो सब संसाधन प्रदान करते हैं देवता लोग। भगवान की सृष्टि है लेकिन उसको प्रदान करने वाले देवता है। जब मनुष्य यज्ञ करता है तो देवता संतुष्टि अनुभव करते हैं, उनको भोजन मिलता है, तो मनुष्यों का जो संसाधन है जीवन का उसको प्रचुर मात्रा में प्रदान करते हैं, ठीक समय से प्रदान करते हैं, तो इसलिए समृद्धि रहती है। तो भगवान गीता में बतलाते हैं कर्म की महिमा को स्थापित करने के लिए कि परस्पर के सहयोग से समृद्धि आती है। और यज्ञ इसमें मुख्य चीज है, यज्ञ और दान, इससे देवता लोग संतुष्ट होते हैं, ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, और उनके संतुष्टि से ज्ञान मिलता है, संसाधन मिलता है, और इसलिए समृद्धि बनी रहती है। और इसलिए सहयोग से जीना चाहिए। सहयोग की बहुत महिमा है कि देवता और मनुष्य के सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि आज तो इतना पतन हो गया कि ये सब बात को लोग समझ नहीं रहे, और देवता से सहयोग करने की बात तो दूर है, मनुष्य आपस में भी सहयोग नहीं कर रहा। लेकिन सहयोग की महिमा है, सहयोग से समृद्धि कैसे आ जाती है, इसको एक घटना से आप समझ सकते हैं। नारद जी देवता के समाज में भी जाते हैं, दैत्य के समाज में भी जाते हैं। एक बार दैत्यों के समाज में गए तो वो लोग एक कंप्लेन दर्ज कर दिए, आपके पिताजी ब्रह्मा जी हम लोगों पर उतना ध्यान नहीं देते, देवताओं को अधिक सुविधा देते हैं, उनको अधिक समृद्धि है। और नारद जी जा करके कहे कि पिताजी कंप्लेन है कि बतलाओ, कहे कि दैत्यों का कंप्लेन है कि उनको आप सुविधा कम दे रहे हैं, कि ना ना हम सुविधा बराबर दे रहे हैं, उनमें सहयोग का अभाव है। और इसके लिए ब्रह्मा जी अब एक फीस्ट का आयोजन किए और दैत्यों को भी आमंत्रित किए, देवताओं को भी आमंत्रित किए, और पंक्ति अलग अलग लगा, और सबको खूब अच्छा खाने के लिए परोसा गया, पत्तल लग गया, सब चीज परोस दिया गया। ब्रह्मा जी कहे कि अभी किसी को खाना नहीं है, और सब चीज सामने आ गया, उसके बाद कहे कि हाथ को बांधा जाएगा, हाथ यहां से मुड़ रहा है, तो ऐसे कुछ व्यवस्था खपचाल देकर किया जैसे सबके हाथ को बंधवा दिए, कहे कि अब आप लोग पाइए, अब पाइए। तो उठाने में तो कोई दिक्कत नहीं था, पत्तल से मिठाई है सब दी, लेकिन अब मुंह में डालने में तो बहुत कठिनाई थी, समझ रहे हैं ना, ये मुड़ेगा तब मुंह में आएगा। अब तो देवता लोग कहे कि ये सब चीज है और इसका लाभ नहीं, तो देवता क्या किए, कहे कि भाई अपने मुंह तक तो नहीं ला सकते, लेकिन दूसरे के मुंह में तो डाल देंगे ना। तो देवता लोग अपने पत्तल से भोजन की सामग्री उठा रहे थे और दूसरे के मुंह में डाल रहे थे, तो एक देवता दूसरे के मुंह में, वो दूसरे के मुंह में, सब देवता लोग खा लिए, खूब अच्छा से खा लिए। और दैत्य अब अपना सामान दूसरे को दे दे, ये तो हो नहीं सकता, तो जोर लगाते थे कि कुछ किसी तरह मुंह में पहुंचा दे, और उठा करके और कोशिश करते थे कि ऊपर से डाल दें, तो ऊपर से डाले तो कहीं कपड़ा पर कहीं कहां कहां गिर गया, सब पत्तल उनका खाली हो गया। फिर दोबारा जोर लगाते थे कि इस बार ट्राई करें, लेकिन सब कपड़ा गंदा, पेट में भोजन कुछ नहीं। इस सहयोग की बहुत महिमा है। और ये जो यज्ञ है, दान है, ये सब सहयोग की भावना पर आधारित है, और अंततः मनुष्य समाज के समृद्धि के लिए इस सब का विधान किया गया। इसलिए यज्ञ दान तप करना चाहिए, और यज्ञ नहीं कर सकते तो पंच यज्ञ जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गृहस्थ है तो पांच पाप रोज होता है, पांच प्रकार के हिंसा रोज होते हैं, खंडनी, वो ढेकी में, जाता में, पेसणी और चूल्हा, चूल्हा में उदकुम भी घिरसर में और मार्जनी झाड़ू लगाने से और इसी से इसको रेक्टिफाई करने के लिए, जब तक यह है तो व्यक्ति स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। और कम से कम होम, पाठ, तर्पण और भूत बलि और अतिथि सपरिया पंच यज्ञ जरूर करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब यज्ञ करें या न करें, संकीर्तन यज्ञ जरूर करना चाहिए। और इसको कोई कर सकता है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं समाज समृद्धि चाह रहा है तो उसको यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए। और यज्ञ करें ठीक ही है ना, तो कम से कम हरिनाम यज्ञ जरूर करना चाहिए, कीर्तन यज्ञ जरूर करना चाहिए। और हिरण्यकश्यप वो सब नष्ट करना चाहता है, इससे क्या उसके उद्देश्य की प्राप्ति होगी, कैसे उसके उद्देश्य की प्राप्ति होगी, तो इन सब बातों को आगे के श्लोकों में कहा है, उसको आप लोग सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।